ओम शांति। आज के प्रातः क्लास है 29 और 68। रूहानी बाप को याद करो। क्यों बोला? क्यों बोला? रूहानी बाप को याद करो, क्योंकि जिस्मानी बाप तो 84 जन्म याद करते रहे। जिस्मानी को याद करने की प्रैक्टिस है, परंतु रूह को और रूहानी बाप को सब भूले हुए थे। अब ये तो समझते हो रूहानी बाप ऊंचे ऊंचे है, ऊंचे ते ऊंचे माने परमधाम में है। तो नीचे हो गया, ऊंचे ते ऊंचे और नीचे ते नीचे की बात इस दुनिया की है। परमधाम में न ऊंचा होता है और न नीचे होता है। माना वो ऊंचे ते ऊंचे धाम का रहने वाला जब इस साकार सृष्टि पर आता है तो साकार मुकरर रथ में प्रवेश करके ऐसी स्टेज बनाता है रथधारी की कि आप समान बना लेते हैं। माना निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनाए देता है। उस लास्ट स्टेज का गायन है ऊंचे ते ऊंचे बाप। हाँ, और सभी अनेक संबंधियों से वो न्यारा जरूर है, जो भी संबंधी होते हैं वो साकार होते हैं। समान बंधन बांधने वाले होते हैं और वो नीचे ते नीचे भी पार्ट बजाते हैं। लेकिन ये बाप ऊंचे ते ऊंचे है और पढ़ाते भी ऊंचे ते ऊंचे हैं। ऐसी ऊंची पढ़ाई और कोई नहीं पढ़ा सकता। ऊंचे ते ऊंचे बाप है तो वर्षा भी ऊंचे ते ऊंचा देता होगा। ऊंचे ते ऊंचा वर्षा कौन सा है जो कोई बाप नहीं देता? करोड़पति बाप होगा तो करोड़ देगा, अरबपति होगा अरब देगा, मल्टी मिलियनेयर होगा तो ढेर की ढेर मिले बच्चे को दे देगा। लेकिन वो सब उसके मुकाबले नीचे बाप साबित होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी धर्म पिता अपने फॉलोअर्स को सारे विश्व की बादशाही नहीं दे सका। कितना भी महत्वाकांक्षी बच्चा हो लेकिन सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कोई नहीं प्राप्त कर सका। ये बाप विश्व की बादशाही का वर्षा देते हैं और देते भी हैं। अहिंसा के आधार पर हिंसा सिखा करके वर्षा नहीं देते। जैसे और हुए हैं बड़े बड़े महत्वाकांक्षी, हिटलर है, नेपोलियन, मुसोलिनी, कितनी महत्वाकांक्षा थी कि सारे विश्व के ऊपर हम राज्य करें, परंतु उन्होंने रास्ता गलत अपनाया, हिंसा का रास्ता अपनाया, इसलिए सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सके। और ये बाप हमें डबल अहिंसा सिखाते हैं, ऐसी अहिंसा जिससे हम सारे विश्व के ऊपर बादशाही प्राप्त कर लेते। ऐसे बाप के सामने तुम बच्चे बैठते हो, और बच्चे नहीं बैठते, और माने जो और धर्म पिताओं के बच्चे हैं, क्राइस्ट के हैं, अब्राहिम के हैं, बुद्ध के हैं, उनके भी तो बच्चे हैं, उनके भी तो फॉलोअर्स हैं, परंतु वो विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं करते अपने बाप से। और तुम ऐसे बाप के सामने बैठते हो जो विश्व की बादशाही देने वाला है, ये तो जरूर याद आता होगा कि हमारा ऊंचे से ऊंचा बाबा है, और ऊंचे से ऊंची नई दुनिया का वर्षा देते हैं। कलयुग से ऊंची दुनिया द्वापर, द्वापर से ऊंची दुनिया त्रेता, और त्रेता से ऊंची दुनिया सत्ययुग। ऐसे सत्यधाम का रहने वाला सच्ची बातें बता करके सतयुग की राजाई देते हैं। बच्चा भी बनाते हैं, फिर खुद ही बैठ बच्चे को पढ़ाते हैं, बाप भी बनते हैं, और फिर टीचर भी बन जाते हैं, और फिर घर भी ले जाते हैं आप समान बनाकर। निराकारी बना करके निराकारी धाम में ले जाते हैं, जहां से फिर तुम आप ही अपने स्थापन की हुई नई दुनिया में योग बल से माँ बाप के गर्भ में, माँ के गर्भ में प्रवेश करते हो। तो देखो ये बहुत मीठे थे मीठा, बहुत ऊंचे थे ऊंचा बाप है, और तुम्हारे सभी दुख दूर कर देते हैं। उनके एबजे में अपार सुख देते हैं, इसलिए दुखहर्ता और सुखकर्ता कहा जाता है। जो समझू सयाने बच्चे हैं वो समझते हैं ऐसी बाप की पाठशाला में हम बैठे हैं, कितनी सहज पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसको कहा जाता है सहज बाप से सहज योग। तुम्हारे सामने बैठे तो पढ़ाने वाले के साथ योग नहीं लगावेंगे, तुम्हारी आत्मा ही पढ़ती है इन ऑर्गन्स के द्वारा, और सुनती भी तुम्हारी आत्मा है कानों के द्वारा, और बाप भी उसके द्वारा समझाते हैं। कौन सा ऑर्गन है जिसके द्वारा समझाते हैं? मुख। तो सतमुख कहा जाता है, सन्मुख, मुख द्वारा समझाते हैं ना। इसलिए फिर कौन से मुख का गायन है? जिस मुख के द्वारा सारी दुनिया समझ जाती है, ब्रह्मा मुख का गाय नहीं है, उस मुख से ब्रह्मा कुमार कुमारियां सुनते होंगे प्रजापिता के द्वारा भी समझते होंगे, लेकिन सारी दुनिया उस मुख के द्वारा समझ जाए ऐसा गायन नहीं है। वो मुख कौन सा है जो ऊंची से ऊंची स्टेज में स्थापन किया जाता है?
गंगा
नहीं, गंगा नाम नहीं है उस मुख का, गौमुख नाम है। गंगा भी जहां से उतरती है, जहां से नाम गंगा पड़ता है, उस स्थान का नाम है गंगोत्तरी, गंगा उत्तरी, परंतु उससे भी ऊंचा स्थान है, उसके जन्म का स्थान उससे भी ऊंचा है। तो गंगा भी कहां से उतरी? गंगोत्तरी तो नीचे ही है, उससे ऊपर नहीं, गायत्री नहीं, गौमुख। तो गौमुख का कितना गायन है, ये गौमुख का गायन क्यों है? मुख लेते हैं ज्ञान सुनाने के लिए तो क्या गौमुख में आते हैं? गौमुख में आते हैं या बैल मुख में आते हैं? शिव बाप किस मुख में आते हैं? बैल में आते हैं। यादगार में अपने यहां जो पहली पहली कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी तो दो बैलों की जोड़ी प्रसिद्ध थी, कहां की यादगार है? संगम युग की ही यादगार है। राम और कृष्ण ये दो बैलों की जोड़ी है, एक में सुनाने के लिए और दूसरे में समझाने के लिए प्रवेश करते हैं, परंतु सारी दुनिया समझती नहीं है उन मुखों से, बैल के मुखों से सारी दुनिया समझती है क्या? नहीं समझती है। अच्छा तुम बच्चे समझते हो? हा? समझते हैं? पक्का निश्चय हो जाता है, फिर माया हिलाए तो नहीं पाती है? हिलाती तो है, अभी तो फाइनल पेपर भी नहीं हुआ है तो माया हिलाई देती है। तो सफलता कब मिलती है जो सारी दुनिया समझ जाए? तब ही सफलता मिलती है जब गौमुख से वो ज्ञान निकलता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि कन्याओं माताओं के मुख से ज्ञान सुनना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? जिस बात में सफलता हो वो ही बात अच्छी लगती है, सफलता ना हो असफलता हो जाए तो अच्छी होते हुए भी कोई अच्छी नहीं कहेगा। इसलिए बोला देखो गौमुख का कितना गायन है, इसमें प्रवेश कर फिर इस माता द्वारा बच्चों को एडाप्ट करते हैं। तो गौमुख में प्रवेश किया या नहीं किया?
किया
है।
बोला भाई गौमुख
में कब किया? आदि में किया या अंत में किया? आदि में भी किया, परंतु आदि में जो किया वो फाउंडेशन था भक्ति का, और अंत में जब ज्ञान गंगा तैयार होके निकलती है तो ज्ञान का फाउंडेशन पड़ जाता है। ज्ञान को पंथ, कृपाण को धारा। जैसे तलवार एक बार हो जाता है तो खेल खलास हो जाता है, ऐसे ही ये तलवार की धार हो जाती है। इसलिए कब माता का रूप भी बच्चों को दिखाई पड़ता है। कब दिखाई पड़ता है?
जब ज्ञान
गंगा निकलती है। और ज्ञान गंगाएं कब निकली? आदि में, मध्य में या अंत में? कब का गायन है? नहीं, आदि में नहीं। निकली भी हो तो प्रसिद्ध नहीं हुई। मध्य में सरस्वती, सरस्वती नदी का क्या गायन है? बीच में आई और बीच में ही चली गई। और गंगा का अंत में गायन है। अंत में ज्ञान गंगाएं निकली हैं तो बच्चों को दिखाई पड़ता है। ऐसे अनुभव बहुतों को होता है, तेरे को अकेले नहीं होता है। सच सच माता समझ फिर दूध भी पीने लग सकते हैं। इतना भावना में आ जाते हैं। परंतु ये सभी साक्षात्कार की बात है। ये ईश्वर की युक्ति कही जाती है। क्या है
जो भावना है तो
युक्ति है, और कोई का भी ऐसा गायन नहीं है। एक ही परमपिता परमात्मा का ये चित्र है और चरित्र भी है। क्या क्या चित्र है और क्या चरित्र है? कि माता भी बनते हैं और पिता भी बनते हैं। गायन भी है, तमेव माता च पिता तमेव। तो भविष्य में विष्णु अथवा लक्ष्मी नारायण का साक्षात्कार भी करेंगे। एम ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। तुम बच्चों को भी समझाते हैं ये तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है। क्या हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? माता पिता समान बनना, माता लक्ष्मी और पिता नारायण। तो साक्षात्कार करा है देते हैं कि फिर से तुमको ये बनना है। तो बताओ पुनर्जन्म कब से शुरू होता है? पुनर्जन्म की भी शुरुआत आखिर कब से? अरे शुरुआत कभी तो होगी। षष्ठी की आदि तो होती नहीं, षष्ठी तो अनादि है। जो अनादि सृष्टि है उसमें जन्म की शुरुआत कब कहें? पहला जन्म कब? 76 कहेंगे। पहला जन्म 76 में माता पिता का तो है, लेकिन पुनर्जन्म तो नहीं है। पुनर्जन्म कब से कहें? नहीं सर, छत्तर तो पहला जन्म हुआ, पुनः माने दोबारा। पुनः जन्म, दोनों शब्द मिलाए तो क्या हुआ? पुनर्जन्म। तो पुनः जन्म कब हुआ?
51
क्यों? नहीं, ज्ञान गीता तो पहले से ही चलती थी, कराची से मुरली निकलती चली आई है, तो ज्ञान गीता तो तभी से है। ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, अमृत कहेंगे तब जब गौमुख हो। कब कहा जाता है अमृत किससे निकला? कहते हैं गौमुख से अमृत निकला। अमृत से अमर हो जाते हैं, अभी मरते जीते रहते हैं कि अमर बने बैठे हैं ब्राह्मण। अभी अभी निश्चय होता है और अभी अभी अनिश्चय हो जाता है। अनिश्चय हो गया तो मर गए, निश्चय हो जाए तो जिंदा हुए। तो गऊ के मुख से निकला हुआ अमृत मिल रहा है अभी? अभी नहीं मिल रहा है। हाँ, वो भी टाइम आएगा कि गऊ के मुख से निकला हुआ अमृत हम पिएंगे, जैसे गंगा जल को पीते हैं। तो भक्त लोग क्या समझते हैं? अमृत जल है। तो ये यहाँ की बात है। तो शुरुआत तब से कहेंगे जब से विष्णु प्रत्यक्ष हो, लक्ष्मी नारायण का संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष हो जाए। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के 8 लक्ष्मी नारायण की बात नहीं है, जो नर से डायरेक्ट नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं उनकी बात है। तो कहेंगे शुरू से। शुरू कब कहें? नहीं, शुरू कब कहें?
ये 18 से होना चाहिए।
18? ये तो पुराना हो गया। जिसे हम 2018 कहेंगे, ये पुराना है या नया है? ये संबत पुराना है या नया है?
पुराना है।
तो पुराने को नया कैसे कह देंगे? नया कहेंगे तो संबत भी नया हो जाएगा, उसका नाम देंगे संबत 111। तो कहेंगे शुरू से। तुम बच्चों ने पुनर्जन्म लिया है तो तुमको स्मृति आई है? आई है स्मृति कि विकर्मी संबत कौन सा है? क्या दो संबत हुए ना? एक तो हुआ विकर्मी संबत द्वापर के आदि से, जब से विकर्म शुरू हुए है, और एक है विक्रम संबत। विकर्मों के ऊपर जीत पहन ली तो स्मृति आई। हर बात की तुमको स्मृति दिलाते हैं। पहले पहले तुम सो देवता थे। सब पहले पहले सृष्टि के आदिकाल में तुम सो देवता थे। ये नहीं कहा हम सो देवता थे, यह सो देवता थे, ये भी नहीं कहा वे सो देवता थे, वो दूसरे धर्म वाले, ये भी नहीं कहा। क्या कहा? तुम सो देवता थे। फिर तुम कैसे सीढ़ी नीचे उतर गए? वो ही नीचे उतरे हुए अभी फिर तुम देवता बनते हो। तो समझो जो पहले पहले जन्म में आए होंगे वो ही 84 के चक्र में आवेंगे। जो आदि वाले थे, शुरू वाले थे, वो ही 84 के चक्र में आवेंगे, वो ही पक्के पक्के देवता कहे जाएंगे। पहले नंबर में कहेंगे प्रिंस श्री कृष्ण। कौन सा श्री कृष्ण? सतयुग का या संगम का? संगम का, जिसका गायन है शास्त्रों में। फिर भिन्न भिन्न नाम रूप धरकर वो इस समय फिर खड़े हैं, तो तुम फिर से सो राजकुमार बनते हो। तुम बच्चों की बुद्धि में है वो ऊंचते ऊंच भगवान है, जो हमको ऊंचते ऊंच बनाता है, ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा करके। वो पतित पावन है, ये स्मृति में रखना है। क्या बात, क्या बात स्मृति में रखना है? कि वो एक ही ऊंचते ऊंच बाप है, जिसके संग के रंग में आने से हम ऊंचते ऊंच स्टेज प्राप्त करते हैं। उसके अलावा और जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, उनके संग के रंग में रंगकर हम कहां जाते हैं? नीचे जाते हैं। इसमें मुझने की कोई बात नहीं है। इसमें किस बात में? कि एक बाप ही पतित पावन है, एक के अलावा और कोई भी पतितों को पावन बनाने वाला नहीं है। तुम्हारी आत्मा पहले 24 कैरेट कंचन थी ना, सच्चे सोने की तौल माप कैरेट से की जाती है। सच्चा सोना होगा तो 24 कैरेट कहेंगे, फिर उसमें जितना मिक्स होता जाता है उतना उसकी कैरेट गिरती जाती है। तो पहले पहले तुम्हारी आत्मा 24 कैरेट कंचन थी, शरीर भी तुम्हारा कंचन था, कोई भी रोग नहीं था, सारी दुनिया ही कंचन बन गई थी, अर्थात सारी दुनिया में प्योरिटी ही प्योरिटी थी। तो विचार करो, हमारा बेहद का बाप कितना ऊंचते ऊंच नॉलेजफुल है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं जो पढ़ाई और कोई पढ़ाई नहीं सकता। न कोई अपना परिचय देंगे कि मैं कैसे आता हूं, बाप खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। बाप के अलावा बाप का परिचय कोई दे भी नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आने के लिए ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। इस साधारण तन में प्रवेश करता हूं, और ये साधारण तन भी बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मिलता है। बहुत जन्मों के अंत का जन्म होगा ही श्री कृष्ण का, इसमें मुझने की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं ऊंचे ऊंचे बाप है, वो बड़ा बाप है, बड़ा बाबा है, तो छोटा बाबा भी होगा या नहीं होगा? कौन है छोटा बाबा, कौन है बड़ा बाबा? है
छोटा ब्रह्मा बाबा,
वो है बड़ा बाप और ये है छोटा बाप। वो है बड़ा बाबा और ये है छोटा बाबा। कौन?
छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा हो गया।
ब्रह्मा बाबा
छोटा बाबा,
छोटा बाबा क्यों?
छोटा बाबा हो गया ना, पहले आया, आज ही आया तो।
कृष्ण भी दो हुए
हैं,
एक के बारे में तो हमें पता ही नहीं था, किसके बारे में? सतयुग में कृष्ण होता है आदि में, ये हम गाते तो थे, कीर्तन करते हैं तो गाते हैं ना, हे कृष्ण नारायण वासुदेव, वोई नारायण वोई कृष्ण। और नारायण कौन से युग में? कहते हैं सतयुग में नारायण का राज्य था, तो सतयुग में नारायण भी और सतयुग में कृष्ण भी। लेकिन ये बात बुद्धि में नहीं बैठी, क्योंकि शास्त्रों में अगड़म बगड़म कर दिया, कृष्ण को ले गए द्वापर युग में, तो बुद्धि में से बात खिसक जाती है। अभी सही सही बात बाप बतलाते हैं कि न तो मैं द्वापर के अंत में आता हूँ कृष्ण बनकर, ये झूठी बात है। कृष्ण वाली आत्मा वास्तव में सतयुग के आदि में जन्म लेती है, और वो कृष्ण वाली आत्मा ही संगम युग में कोई मुकर्रर रथ में प्रवेश करके संगम युगी कृष्ण का पार्ट बजाती है, परंतु गायन आत्मा का होता है या शरीरधारी का होता है? आत्मा के लिए नहीं कहते हैं, शरीर के लिए कहते हैं। आत्मा का नाम तो सिर्फ शिव का ही है, बाकी जो आत्माएं हैं उनका तो अपना शरीर होता है और शरीर का नाम पड़ता है। तो श्री कृष्ण के रूप में पार्ट बजाने वाले भी डबल हो गए, कौन कौन? सतयुग का कृष्ण और संगम युग का कृष्ण। तो देखो उनमें एक हो गया रचयिता और एक हो गई रचना। कौन सा कृष्ण हुआ रचयिता और कौन सा कृष्ण हुई रचना? रचना पहले या रचयिता पहले? रचयिता पहले, रचना बाद में। तो कौन सा रचयिता? संगम युग में जो कृष्ण है, शरीरधारी है या निराकारी? शरीरधारी है। तो संगम युग में जो कृष्ण है वो हुआ रचयिता, जो नर से नारायण कहा जाता है, और सतयुग में उससे जो पैदा होगा वो हुई रचना, वो भी साकारी होगा। लेकिन रचना है, रचना बाद में होती है, रचयिता पहले होता है। तो देखो ये रचयिता और रचना का परिचय देते हैं। वो रचयिता एक ही है, बेहद का रचयिता है, बाकी ये सभी हैं हद के रचयिता, जिन्हें लौकिक बाप कहा जाता है, धर्म पिताएं कहा जाता है। धर्म पिताएं हद के रचयिता हैं या बेहद के रचयिता हैं? हद के रचयिता कहेंगे, बेहद के बाप को सभी बाबा बाबा कह के पुकारते हैं। ऊंचते ऊंचे तो उनका यादगार भी कैसा होगा? ऊंचते ऊंच होगा। कौन सा यादगार है? ऊंचते ऊंच का यादगार कौन सा है? यादगार माने मंदिर। कौन सा मंदिर है जो ऊंचते ऊंच कहा जाता है, बनाया भी ऊंचे स्थान पर जाता है? शिव का मंदिर ऊंच स्थान पर बनाया जाता है और ऊंचते ऊंच माना जाता है। और जो भी मंदिर हैं, यादगार हैं, वो ऊंचते ऊंच नहीं हैं और इतने ऊंचे स्थान पर भी नहीं बनाई जाती। शिव का मंदिर देखो कहां जाकर के बनाया है, ऊंची से ऊंची यादगार, कैलाश पर्वत दिखाते हैं, अमरनाथ दिखाते हैं, तो यादगार भी ऊंचे से ऊंची है। यहां माउंट आबू में क्या कहते हैं उसे? गुरु शिखर यादगार है। नाम क्या रखा? गुरु। कैसा गुरु? शिखा माने चोटी, चोटी का गुरु है, नाम दिया है गुरु शिखर। यहाँ तपस्या करते हैं और वहां सूक्ष्म वतन में बैठे दिखाए। वो है मूल वतन, जहां बाप के साथ तुम भी रहते हो। तो बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, रोज रोज समझाना पड़ता है क्या? रोज रोज कोई बात क्यों समझानी पड़ती है? बार बार रिपीट क्यों करनी पड़ती है? है एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करते हैं कि मैं तुम्हारा ऊंचे ऊंचे बाप हूं, मैं तुम्हारा ऊंचे ऊंचे बाप हूं? रट्टा लगाए हुए हैं रोज, ऐसे क्यों?
बच्चे
भूल जाते हैं, कहते हैं मैं सन्मुख आके बैठता हूं तो भी भूल जाते हैं। है सन्मुख पढ़ाता हूं, तुम बच्चे सामने बैठे हो तो सामने जो चीज देखी जाती है, आंखों से जो चीज देखी जाती है, वो याद आती है कि भूल जाती है? याद आती है। तो तुमको क्यों भूल जाती है? माया बुलाई देती, माया का तो नाम दे दिया है। माया कोई और चीज थोड़े ही है, माया है अपनी कमजोरी। कौन सी कमजोरी? जन्म जन्मांतर जो देहधारी को याद करते रहे, देहधारी में बुद्धि लगाते रहे, वो देहधारी यहाँ नहीं है क्या? जन्म जन्मांतर कौन से बाप को याद किया, कौन से टीचर को याद किया, कौन से गुरुओं को याद किया? देहधारियों को याद किया या निराकारी को याद किया? देहधारियों को याद किया। तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है किस बात की? देहधारी को याद करने की प्रैक्टिस पड़ गई। देहधारी से फट लगाव लग जाता है और जो निराकारी बाप है वो इन आंखों से देखने में आता ही नहीं है, इसलिए वो बार बार भूल जाता है। इसलिए बाप को बार बार याद दिलाना पड़ता है। तो रोज रोज समझाना पड़ता है, बच्चे तुम्हारा बेहद का बाप आया हुआ है। और जो बाप हैं, महान धर्म पिताएं भी कहे जाते हैं, वो बाप हैं कि नहीं? वो भी बाप है, वो नहीं भूलते। और ये बाप भूल जाता है, कब तक भूलता रहेगा? अरे कोई लिमिट है कि नहीं है? क्या लिमिट है? कि मरते दम तक भूलते ही रहेंगे, कब तक याद रहेगा, कब तक भूलता रहेगा? बताया, जब तक देवताओं का झाड़ अर्थात तुम ब्राह्मणों का झाड़ फुल स्थापन नहीं हो जाएगा, क्या पूरा झाड़ जब तुम ब्राह्मणों का स्थापन हो जाएगा, स्थापना का काम पूरा हो जाएगा, तब तक तुमको समझाते ही रहेंगे और तुम भूलते ही रहेंगे। यह प्रजापिता ब्रह्मा है, याद क्यों दिलाया? यह प्रजापिता ब्रह्मा है, यह कह के किसकी तरफ इशारा किया?
भविष्य की तरफ इशारा किया।
जिस तन में बाप मुकर्र रूप से आकर के प्रत्यक्ष होते हैं, यह तन प्रजापिता ब्रह्मा है और तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हो, एडॉप्टेड होते हो किसके द्वारा है नहीं तो, बाप एडॉप्ट करने वाला है, लेकिन जिसके द्वारा एडॉप्ट होते हैं नहीं, बाप जब बच्चे को एडॉप्ट करता है तो क्या करता है, किसी बच्चे को लेता है और किसकी गोद में देता है, माँ की गोद में रख देता है, उसको कहते हैं एडॉप्शन। तो तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, एडॉप्टेड माता से होते हो, क्या तुम्हारा ये दिव्य जन्म है, तुम गर्भ से जन्म नहीं लेते हो, तुम बच्चों को बाप गोद लेते हैं माता के द्वारा। पहले बच्चे साक्षात्कार भी करते थे, फिर वो साक्षात्कार कराना बंद कर दिया है, क्योंकि लोग जादू समझ रहे थे। अब यहां जादू आदि की तो कोई बात है नहीं कि नजर बांध देंगे जादू कर देंगे। बाप कहते हैं नथिंग यू, ये कोई नई बातें नहीं है, हूबहू कल पहले मिसल जो होता आया है वो ही होता रहेगा। बाप तो एकदम निष्फुरना रहते हैं, हर 5-4 वर्ष के बाद मैं आता हूं, इतना ऊंचे ते ऊंचा बड़ा बाबा जरूर इतनी बड़ी जागीर देंगे, तुमको विश्व का मालिक बनाने की युक्ति बताते हैं। उस बाप से ऊंचा कोई भी नहीं है। कौन बोल रहा है, किसके तन में बोल रहा है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाप बोल रहा है। तो बोलने वाला जो शिव बाप है वो ये क्यों नहीं कहता कि मुझ बाप से ऊंचा कोई नहीं है, ये क्यों कहता है उस बाप से ऊंचा कोई नहीं है, उस कह के दूर क्यों कर दिया, ब्रह्मा के तन में ही बोल रहा था, बाजू में ही तो बैठा।
बाद में
बना सुप्रीम सोल जो ब्रह्मा में प्रवेश था वो अपने लिए नहीं कहता कि मैं ऊंचे ते ऊंच हूं, जो ऊंच बनेगा वो नीचे भी बनेगा, वो ना ऊंचे बनता है ना नीचे बनता है, वो तो सदा एक रस है। शंकर के मस्तक में जो तीसरा नेत्र शिव नेत्र कहा जाता है वो शिव नेत्र सदा शिव कहा जाता है, वो न कल्याणकारी है न अकल्याणकारी है, वो तो सदैव एक रस ही है। ऊंच और नीच का पार्ट बजाने वाला कौन है, वो रचयिता है या रचना है जो ब्रह्मा के तन में बोल रहा था। अरे वो रचयिता है, वो नई दुनिया रचता है, शरीर ही खत्म हो गया, ब्रह्मा का शरीर रह गया कि खत्म हो गया, तो रचयिता कैसे हुआ, ना रचना है ना रचयिता है। हाँ ब्रह्मा को रचना कहेंगे, लेकिन वो ब्रह्मा भी उसकी यादगार शास्त्रों में नहीं है, उसकी मूर्ति भी नहीं बनती, कौन सी ब्रह्मा की यादगार है, कौन सी ब्रह्मा की पूजा होती है, वो नहीं, वो ही ब्रह्मा जब जगदम्बा का रूप धारण करता है तो पूजा होती है, वो ही जगदम्बा गौपुख कही जाती है। तो बोला बाप कहते हैं कि सभी आत्माओं का बाप एक है, उस बाप से ऊंचा कोई नहीं है, तो अब अपन को आत्मा समझ कर बैठो और सब बातें भूल जाओ। बेहद का बाप आकर बेहद का वर्षा देते हैं। 29वां वर्ष की वाणी का दूसरा पेज, आधा कल्प तुम सुख में रहते हो, उसको कहेंगे दिन, और आधा कल्प तुम ठोकरें खाते रहते हो। ठोकरें खाते हैं तो सुख कहेंगे या दुख कहेंगे? दुख कहेंगे। जब तुम दिन में होते हो तो तुम धक्का नहीं खाते हो, क्या कोई संबंधी से धक्का नहीं खाते हो, कोई गुरु से धक्का नहीं खाते हो, कोई तीर्थों में धक्के नहीं खाते हो। धक्का खाना माना धोखा खाना। धोखेबाज क्या करते हैं है? जो धोखेबाज होते हैं वो क्या करते हैं? धोखा दे देते हैं ना। जब धोखा दे देते हैं, जिसको धोखा मिलता है वो कहता हमने धक्का खाया, फालतू धक्का खाया। न धक्का खाते न धोखा खाते तो अच्छा था। तो दिन में तुम धक्का नहीं खाते हो, धोखा नहीं खाते हो, और रात में तुम धक्के पर धक्के खाते रहते हो। अब धक्का दिन में नहीं खाया जाता है, रात में खाया जाता है। क्यों क्यों धक्का खाया जाता है? क्यों धोखा खाते हैं? क्योंकि पहचान नहीं पाते हैं तो धोखा खाते हैं। तो भक्ति मार्ग में धक्के खाने पड़ते हैं। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए इस बात की, अरे तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, किस बात की खुशी? क्या विश्व की बादशाह ही मिल गई? मिल गई? नहीं मिल गई तो किस बात की खुशी?
धोखा खाने,
हाँ, अब हम धक्का खाने से, धोखा खाने से बच गए, बच गए, धोखा खाने से बच गए। अगर सभी बच गए तो फिर विष्णु पार्टी कहाँ से उठ के खड़ी हो गई, और विष्णु पार्टी में गुरु बन के कहाँ से बैठ गए? धक्का खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? है, धक्का खा रहे हैं तो बच कहाँ गए?
सब नहीं खा रहे
हैं।
सब नहीं खा रहे हैं, बच्चे।
अच्छा, जो नहीं खा रहे हैं वो कल नहीं खाएंगे, माया उनको धक्का नहीं खिलाएगी, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी है?
नहीं है,
है? गारंटी तो नहीं है, तो फिर खुशी तो बेकार हो गई। बाबा तो पूछ रहे हैं तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम धक्का खाने से बच गए। ये खुशी की बात नहीं है, है?
खुशी की बात है।
खुशी की बात है। फिर इधर ये भी कहते कोई गारंटी नहीं है? नहीं, कुछ बच्चे तो बाबा की नजर में ऐसे हैं जो धक्का खाने से बच गए। अब कौन है ये अभी पूरा पता नहीं पड़ा है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि ऊंच थे ऊंच शिव बाबा, जिसको भक्ति मार्ग में हम 2500 साल पुकारते आए, वो आकर के हमको मिला है। पुकारते आए दुख हरो, सुख दो और दुख हरो, सुख करता और दुख हरता, दुखदाम से सुखदाम में ले चलो। बाप कहते हैं दुखदाम और सुखदाम ये तुम्हारा चक्कर है, मेरा कोई चक्कर नहीं। क्या ये चक्कर काटना, चक्कर खाना, ये तुम्हारा चक्कर है, मेरा चक्कर मेरा नहीं है। तो देखो कितनी सहज रीति समझाते हैं, ये भी समझाए देते हैं कि रावण के सिर के ऊपर गधे का शीश दिखाया जाता है। क्यों हैं? क्यों दिखाते हैं? अरे देवीमान, बाप जानते हैं कितने टट्टू बुद्धिमान पड़े हैं। ये टट्टू नाम क्यों दे दिया है? टट्टू क्या करता है? वजन ढोता है। जिसको वजन ढोने का स्पेशल काम दिया जाता है उसे कहते हैं टट्टू। एक होता है घोड़ा चढ़ने वाला और एक होता है टट्टू जिस पर सिर्फ वजन ढोया जाता है। तो बाप जानते हैं कितने टट्टू बुद्धि बन पड़े हैं, माने बुद्धि जो है वो बोझ उठाने की आदि हो गई है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अपना सारा बुद्धि का बोझ मुझे दे दो, लेकिन बच्चे क्या करते हैं है? अपने ऊपर सारा बोझ ले लेते हैं। तो देखो रावण को गधे का शीश दिखाते, रावण के कितने सर? दस सिर। वो दस सिर ऊपर या गधे का सिर ऊपर? गधे का सिर ऊपर और वो दस सिर नीचे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो रचयिता बाप है वो बताते हैं कि तुम बच्चे जो मेरी रचना हो नंबर वा वो टट्टू बुद्धि बन पड़ते हो, बुद्धि पर फालतू का बोझ ले लेते हो। तो पहला पहला बच्चा कौन हुआ? फिर भगवान। वो बच्चा भी है और भगवान भी है। बच्चा माने रचना, रचना भगवान होता है। रचयिता भगवान होता है या रचना भगवान होता है? रचयिता भगवान होता है। तो देखो ये रावण के ऊपर जो गधे का शीश दिखाया है वो किसकी यादगार है?
ब्रह्मा की यादगार
है। पहला पहला बच्चा कौन हुआ? षष्ठी का पहला पहला पत्ता कौन है? उसको तो गधा नहीं कहेंगे, वो तो सोलह कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, उसको गधा कहेंगे है? जो 84 जन्म लेने वाले बच्चे हैं षष्ठी में, उन बच्चों में पहला नंबर है, पहला पत्ता है, रचना पत्ता है, पत्ता रचना कहा जाता है, बीज बाप कहा जाता है,
नंबर वार होता
है। हाँ, तो पहला जो पत्ता है उसको गधा कहेंगे, उसको गधा कहेंगे या ये कहेंगे कि वो पहला पत्ता आखिरी जन्म में आकर क्या बन जाता है? गधा बन जाता है। जो 10 सिर दिखाए गए हैं रावण के, 10 धर्म के 10 पिता धर्म पिताएं हैं ना, उन धर्म पिताओं के ऊपर भी कंट्रोल करने वाला बन जाता है। क्या? काम क्रोध लोह मोह अहंकार, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 10 विकार और प्रकृति के 5 तत्व, 5 विकार और 5 तत्व, ये 10 मिलकर के रावण के 10 शीश बने और इन 10 शीशों को कंट्रोल करने वाला कौन बन जाता है? अरे गधा माने देहाभिमान, जो देहाभिमान है वो 5 विकारों को पैदा करता है और उस देहाभिमान के कारण ही जो 5 तत्व हैं वो तामसी बन जाते हैं। अगर देहभान ना हो आत्माभिमानी हम बन जाएं तो 5 तत्व कैसे बन जाएंगे? सतो प्रधान बन जाएंगे। सतयुग में पांच तत्व सतो प्रधान क्यों होते हैं? क्योंकि आत्मा सतो प्रधान होती है और यहां आत्मा तमो प्रधान है, तो पांच तत्व भी तमो प्रधान है। लेकिन इन पांच तत्वों को और आत्मा को जो तमो प्रधान बने पड़े हैं, इनको चलाने वाला कौन है? इनका मूल कौन है? इनकी जड़ कौन है? देह अभिमान। देह अभिमान, देह अभिमान। तो कड़े से कड़ा जो विकार हुआ वो क्या हुआ? देह अभिमान। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इतने कड़े नहीं है, इनसे भी जास्ती देह अभिमान बहुत कड़ा है। देखो कितना समझाते हैं, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, और जिसको समझाते हैं, जिसके लिए ये समझाया जाता है, वो ही लंबा टाइम लगाता है, ये दूसरे बच्चे लंबा टाइम लगाते हैं। देर में किसकी बुद्धि में बैठता है? कौन सी आत्मा है जिसकी बुद्धि में सबसे जास्ती देर में बैठता है ब्राह्मण बच्चों के बीच में? ब्रह्मा की आत्मा ही सबसे जास्ती लेट समझती है। ये गीता का भगवान शिव शंकर भोलेनाथ है, कृष्ण नहीं है, अर्थात मैं नहीं हूं, मेरा बाप जो मुझे सत्युग में जन्म देने वाला है वो गीता का भगवान है। सदैव नहीं, तब जब निराकार शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करता है तब गीता का भगवान है। लेकिन वो आत्मा समझे क्या बैठी है? अभी भी समझे बैठी है, इतना एडवांस नॉलेज है ले रही है, फिर भी गुलजार दादी में किस आधार पर प्रवेश करती है? क्या समझ करके?
गीता का भगवान नहीं,
अपन को गीता का भगवान समझती है, इसलिए गुलजार दादी में अभी भी प्रवेश करती है और पढ़ाई जाकर के पढ़ाती है, उन बच्चों को अपना बच्चा समझती है। जब तक वो आत्मा पूरा न समझे तब तक और ब्राह्मण बच्चे भी पूरा समझ नहीं सकते। एक के पतित बनने से सब पतित बनते हैं और एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो पढ़ाई किसके लिए खास चल रही है? जो सृष्टि का पहला पत्ता है उस पत्ते के लिए पहली पढ़ाई खास चल रही है। बोला रावण ने, देखो तुमको क्या बनाई दिया है, इसलिए ये निशानी दे दी है। क्या क्या निशानी दे दी है रावण ने? टट्टू की निशानी दे दी है, पांच विकार स्त्री में, पांच विकार पुरुष में। कौन सी स्त्री है? क्या नाम दिया है शास्त्रों में उसका? मंद उदरी। उदर उदर माने पेट, ये पेट होता है, इस पेट में बात पचती है, कोई को नहीं पचती है, खास करके कहते हैं ना औरतों के बुद्धि रूपी पेट में बात पचती नहीं, तो ये पेट हो गया आत्मा का। और शरीर का पेट कौन सा हुआ? ये। तो बोला मंदोदरी को दिखाते हैं स्त्री के रूप में और रावण को दिखाते हैं पुरुष के रूप में। पुरुष के पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये पुरुष के माथे ही क्यों जड़ दिए? क्या स्त्रियों में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं होते? फिर ये रावण को पुरुष रूप देकर के उसके ही माथे पर पांच विकार क्यों लगा दिए? क्या कारण है? नहीं, स्त्रियों में देह अभिमान ज्यादा होता है और पुरुषों में विकार जास्ती होते हैं। विकारों में काम विकार जास्ती होता है। स्त्री चोला ज्यादा सुंदर होता है या पुरुष चोला ज्यादा सुंदर होता है? स्त्री चोला ज्यादा सुंदर होता है। तो वो देहभान का सुंदरता वो भूलती नहीं है, इसलिए स्त्री को दिखाते हैं पांच तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, है ना। पांच तत्वों की सुंदरता होती है। दुनिया में लोग इतना घूमने जाते हैं चारों तरफ, घूम घूम के क्या देखते हैं? आत्मा को देखते हैं, है? नहीं, प्रकृति का सौंदर्य देखने जाते हैं। वो जड़ प्रकृति का सौंदर्य देख रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो ये नहीं जानते ये जड़ प्रकृति जो है वो मुख्य है या जड़ प्रकृति का मानिंद चैतन्य प्रकृति मुख्य है। जैसे आसमान के सितारे हैं, सूरज चांद हैं, ये मुख्य नहीं है, ये तो जड़ हैं, लेकिन इनको पलटने वाला, इनको परिवर्तन करने वाला चैतन्य आत्माएं हैं या ये जड़ सितारे हैं? चैतन्य आत्माएं हैं जिनको ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, मंगल, सोम ये नाम दिए हुए हैं। तो ऐसे ही ये मंदोदरी का नाम दिया हुआ है, जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद हो जाता है। कब हो जाता है? सत्युग में, कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में मंदोदरी ऐसी तामसी बन जाती है कि देहभान हटाने से भी नहीं हटता। तो बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, ये बात पक्की याद रखो, ये सारी दुनिया सुख दुख का खेल है। सुख काहे से होता है और दुख काहे से होता है? है आत्माभिमान से होता है सुख और देहभान से होता है दुख। ओम शांति।